तारापरी ने अपनी माँ द्वारा दी गई अदृश्य शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को ओझल कर लिया और अमन के कमरे में पहुंच गई। वहां उसने माँ बेटे की बातचीत सुन ली और समझ गई कि खुशी से शादी अमन की मजबूरी थी। वो ये शादी केवल लोगों के मुंह बंद करने के लिए कर रहा था। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक हॉल में कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों दौड़कर वहां गए तो देखा कि पूरा हॉल बिखरा हुआ था और जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे। करिश्मा जी को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और उन्होंने अमन से कहा, वो लोग वापस आ गए हैं, वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमन उनकी बात सुनकर चौंक गया और बोला, मैं अभी जाकर उन लोगों की जान ले लूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन करिश्मा जी अमन को कहीं नहीं जाने देती और उसे उसके कमरे में छोड़कर आती हैं और अपनी जादुई शक्ति से हॉल को साफ करके पहले जैसा सुंदर बना देती हैं। अमन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और करिश्मा जी का इंतजार कर रहा था। करिश्मा जी हॉल साफ करने के बाद जल्दी से अमन के कमरे में चली गई। तारापरी भी उनके पीछे पीछे थी। तारापरी उन लोगों की बातें सुनने के चक्कर में ये भी भूल गई थी कि उसका एक पहर पूरा होने वाला था और एक पहर पूरा होने के बाद तारापरी किसी भी वक्त इंसानी रूप में वापस लौट सकती थी। करिश्मा जी अमन के कमरे में गई और बोली, तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने की बिल्कुल मत सोचना और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे हमारे घर में घुस आएं। ये जरूर उनका हमें धमकाने का इरादा था। बेटा, हमें होश से काम लेना होगा। बेनोक चाहे कुछ भी कर ले, उस पत्थर की हिफाजत हम अपनी जान देकर भी करेंगे, करिश्मा जी ने अपने अनजान दुश्मनों के बारे में बात करते हुए कहा। तारापरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करिश्मा जी किन दुश्मनों के बारे में बात कर रही थी और ये पत्थर क्या है, अब इसका क्या मसला है। तारापरी का कन्फ्यूजन के मारे बुरा हाल था। कल शाम हल्दी का भी फंक्शन था। तारापरी को जो करना था वो आज रात ही करना था, क्योंकि अगर अमन का नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ गया तो वो फिर तारापरी के लिए किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि किसी और के नाम की हल्दी लगते ही अमन की कुंडली नक्षत्र सब किसी और लड़की के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद अगर तारापरी अमन के साथ रिश्ता बना भी लेती है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तारापरी मन ही मन सारी बातें सोच रही थी कि तभी अमन की आवाज़ सुनाई दी। अमन करिश्मा जी से कह रहा था, आप मुझे जाने दीजिए, मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तिलस्मी पत्थर को पाने की उनकी इच्छा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तब करिश्मा जी थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे अलावा इस इंसानों की दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैंने किस तरह से तुम्हें पाला है। मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। वो लोग हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, हम लोग उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पिता ने भी यही भूल की थी, वो गुस्से में उन लोगों से लड़ने जा पहुंचे थे और आज तक वापस नहीं आए हैं। उन लोगों ने तो हमें उन्हें आखिरी बार भी देखने नहीं दिया था। तब अमन बोला, माँ, आप मुझे जाने दीजिए, मैं उन सबको मार डालूंगा। करिश्मा जी ने अमन से कहा, मैंने कहा ना तुम्हें, तुम ये सब भूल जाओ और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, और अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, समझे तुम। ऐसा कहकर करिश्मा जी अपने कमरे में चली गई। तारापरी स्तब्ध सी वहीं खड़ी रह गई। तारापरी अदृश्य होकर बिल्कुल अमन के पास ही खड़ी थी। अमन कुछ सोचता हुआ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ था और वहां से अपना खूबसूरत गार्डन देख रहा था। आज जंगल में जो कुछ भी हुआ उसे सब याद आ रहा था। उस बूढ़े बाबा की कही हुई एक एक बात उसे रह रहकर याद आ रही थी। वो उन मूर्तियों के बारे में सोचने लगा था और तारापरी के साथ जो उसका पहला किस था वो उसे याद आने लगा। वो याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। तारापरी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो सोच रही थी अब अमन आगे क्या करने वाला था, और देखते ही देखते काफी देर हो चुकी थी। तारापरी इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी, लेकिन वो अपने आप को अदृश्य ही मान रही थी। तभी अमन सोने के लिए बेड की ओर पलटा था और सीधा उसके होंठ तारापरी से जा टकराए थे, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसी हालत में वो तारापरी को लेकर बेड पर गिर पड़ा। उन दोनों के होंठ अभी भी आपस में मिले हुए थे। अमन तारापरी के ऊपर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वो उसके ऊपर था और ऊपर से उसके होंठ तारापरी के होंठों से मिले हुए थे। अमन के दिमाग ने एकदम काम करना बंद कर दिया था और वो सब कुछ भूलकर उस वक्त तारापरी को जोश से चूमने लगा था। तारापरी भी उस वक्त भूल चुकी थी कि वो इंसानी रूप में आ चुकी थी। एक बार फिर उन दोनों में प्यार शुरू हो चुका था और पूरे 10 मिनट तक वे दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। और अभी अमन आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक जोरदार आंधी आई, जिससे अमन के कमरे में रखा हुआ वास गिर पड़ा, जिससे वे दोनों एक झटके से अलग हो गए। वो साया जो हर पल उन दोनों के साथ था, वो अभी ये नहीं चाहता था कि तारापरी और अमन एक हों। तारापरी और अमन एक खूबसूरत ख्वाब से जागे थे। एक दूसरे को चूमते वक्त वे दोनों जन्नत की सैर कर रहे थे। अमन ने जैसे ही तारापरी को अपने नीचे पाया, वो एक झटके से उसके ऊपर से खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। तारापरी भी अपने आप को देखती हुई उठ खड़ी हुई। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन शर्म की वजह से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर अमन थोड़ा सा संभल कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तारा परी कुछ जवाब नहीं दे पाई और हकलाकर बोली, वो ये नई जगह है ना मेरे लिए, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, तारा परी ने हिचकिचाते हुए कहा, जबकि उसे अमन के सामने काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि तारा परी के अंदर अब इंसानी भावनाएं थी। उसके अनुसार किसी भी लड़की के लिए ऐसी सिचुएशन काफी ज्यादा शर्मनाक थी। फिर तारा परी ने कहा, आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे प्लीज, वो आपका बंगला इतना बड़ा है कि मुझे आइडिया ही नहीं है मेरा कमरा कौन सा था। अमन तारा परी पर एक गहरी नजर डालता हुआ बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे फंसाना चाहती हो अपने हुस्न के जाल में। तारा परी को अमन की इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। वो आंखें बड़ी करके अमन को देखने लगी और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं। अमन थोड़ा सा आगे बढ़ा और तारा परी के मुंह पर आती हुई उसके बालों की लटों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार आप किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आ जाती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। अमन तारा परी से अगर ये बात किसी और सिचुएशन में मोहब्बत से कहता तो शायद वो खुशी के मारे झूम उठती, लेकिन वो इस वक्त किसी और लहजे में कह रहा था जो तारा परी को बेहद नागवार लगा था। तारा परी तैश में आ गई और बोली, आपका दिमाग तो ठीक है, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इतना बड़ा घर, पैसे, बंगला देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम मुझसे रिश्ता बनाकर हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहती हो। अमन ने तारा परी को बेइज्जत करते हुए कहा और बोला, तुम्हें पता है मिस तारा, मुझे नफरत है तुम जैसी लड़कियों से जो माल और दौलत के लिए किसी के भी साथ सोने को तैयार हो जाती हो।
तुम्हारे जैसी कितनी लालची लड़कियों से पाला पड़ा है मेरा, एक यही कारण है कि नफरत है मुझे औरतों से। अमन के मुंह में जो आ रहा था वो बोलता जा रहा था। तारा परी अमन की इस बेरुखी पर तड़प कर रह गई। उसे अमन से कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन आखिर वो वही इंसान था जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आई थी। अमन इकलौता वो इंसान था जिसके लिए तारा परी पृथ्वी पर आई थी। अमन के अलावा कोई और कारण नहीं था उसका पृथ्वी पर आने का, और अब अमन की ऐसी कटी छिली बातें उसे अंदर तक छलनी कर रही थीं। उसे वो राक्षस याद आ गया था जो हर रात उसके जिस्म को नोचता था। उसे तो केवल तारा परी के जिस्म से मतलब था, लेकिन अमन की बातें तो सीधा उसकी रूह पर असर कर रही थीं। अमन इतने पर भी चुप नहीं हुआ और वो आगे बोला, अगर अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो आओ मेरी रात को रंगीन करो, बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब तारा परी का सब्र जवाब दे गया था और उसने ना आओ देखा ना ताओ और एक जोरदार तमाचा अमन सिंह राठौर के मुंह पर मार दिया। और तारा परी अमन पर चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है, आखिर आप जानते ही क्या है मेरे बारे में जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं मुझे, और प्लीज़ मेरे बारे में ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मुझे आपकी माल और दौलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे आप, और जो भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। और एक बात बताइए, अगर आप मुझे किस नहीं करना चाहते थे तो आप हट भी तो सकते थे, क्यों मुझे चूम रहे थे। तारा परी ने बेशर्म होकर कहा। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अमन क्या सोचेगा क्या नहीं, और वो आगे बोली, और मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन ले, आइंदा मेरे बारे में इस तरह के शब्द यूज करने से पहले मेरे इस थप्पड़ को याद कर लेना। तारा परी ने अंगारे बरसाती आंखों से अमन को देखते हुए कहा। वो साया जो हमेशा उन दोनों पर नजर रखे हुए था, उन दोनों को झगड़ता देख वहां से धीरे धीरे गायब हो चुका था, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। जब भी तारा परी और अमन एक होने की कोशिश करेंगे, वो साया फिर लौटेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा।